आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राना शाहिद। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के साड़ंद में सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन किया। वाराणसी में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में दोनों राज्यों के बीच पर्यटन और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए समझौते हुए। केंद्र सरकार ने 15वें वित्त आयोग के तहत प्रदेश के ग्रामीण विकास के लिए 945 करोड़ रुपए का फंड जारी किया है और खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में पेट्रोल डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त स्टॉक है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महावीर जयंती के अवसर पर गुजरात के साड़ंद में केन्स सेमीकंडक्टर के ओएसएटी संयंत्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इस संयंत्र में होने वाला उत्पादन सेमीकंडक्टर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि साड़ंद स्थित इस संयंत्र में निर्मित चिप्स अमरीका तक पहुंचेंगे। इस संयंत्र के उद्घाटन से भारत के सेमीकंडक्टर उद्योग को नई गति मिलने का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केन्स के उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा पहले ही बुक हो चुका है।
साणन और सिलिकॉन वैली के बीच नया ब्रिज सा बन गया है। कैलिफोर्निया की कंपनी के लिए साणन का ये प्लांट इंटेलिजेंट पावर मॉड्यूल्स दे रहा है। मुझे बताया गया है कि यहां बनने वाले प्रोडक्ट का एक बड़ा हिस्सा पहले ही एक्सपोर्ट के लिए बुक हो चुका है।
श्री मोदी ने प्रौद्योगिकी के इस दशक को भारत का दशक बताया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने गांधीनगर के कोबा में सम्राट संप्रति संग्रहालय का उद्घाटन किया। यह संग्रहालय जैन इतिहास सम्राट संप्रति के जीवन, उनके शासन और अहिंसा के संदेश को समर्पित है। श्री मोदी ने कहा कि कोबा तीर्थस्थली आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि नालंदा का पुनरुद्वार केवल बिहार या भारत की उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह पूरे विश्व के लिए बौद्धिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण की शुरुआत का प्रतीक है। राष्ट्रपति नालंदा विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थीं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आयोजित एमपी यूपी सहयोग सम्मेलन 2026 में दोनों राज्यों के बीच कई महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मध्य औद्योगिक सहयोग, पर्यटन विकास और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए बड़े निर्णय लिए गए हैं। इसमें काशी विश्वनाथ धाम और बाबा महाकाल मंदिर से संबंधित संस्थाओं के मध्य आपसी सहयोग तथा एक जिला एक उत्पाद को वैश्विक बाजार से जोड़ने के समझौते शामिल हैं।
100 बेड का हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं, 100 करोड़ का हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं तो 30 करोड़ का उसमें भी अनुदान दे रहे हैं। अगर आप होटल डालना चाहते हैं उसमें भी 30% अनुदान देना चाहते हैं। अब तो हमने कृषि कल्याण वर्ष मना रहे हैं, कृषि कल्याण वर्ष में कृषि आधारित उद्योगों के लिए 50% के अनुदान देने की व्यवस्था हमारी सरकार के माध्यम से हो रही। सब क्षेत्रों में लगातार समान रूप से आगे बढ़ते हुए मध्यप्रदेश एक नई उड़ान के लिए तैयार है। आइए हम सब मिलकर के इसी प्रकार के आयोजनों से दोनों राज्यों के संबंध को और प्रगाढ़ करें।
श्री यादव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केन बेतवा लिंक परियोजना और 2000 मेगावाट की संयुक्त सोलर परियोजना से बुंदेलखंड क्षेत्र का भाग्य बदलने जा रहा है। साथ ही प्रदेश में हॉस्पिटल, होटल और कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए विशेष अनुदान भी दिया जा रहा है। केंद्र सरकार ने ग्रामीण स्थानीय निकायों को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए 15वें वित्त आयोग के तहत मध्य प्रदेश सहित 8 राज्यों को 2461 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की है। इसमें प्रदेश को सबसे बड़ा हिस्सा प्राप्त हुआ है। प्रदेश के ग्रामीण विकास के लिए केंद्र ने 945 करोड़ रुपए से अधिक के अनुदान स्वीकृत किए हैं। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर प्रदेश और विशेष रूप से ग्वालियर चंबल संभाग में आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने पर विस्तृत चर्चा की। बैठक में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने क्षेत्र के विकास के लिए कई बड़ी सड़क परियोजनाओं को हरी झंडी दे दी है। बैठक में निर्णय लिया गया कि NHAI द्वारा ग्वालियर भिंड इटावा राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कार्य शीघ्र ही प्रारंभ किया जाएगा। इसके साथ ही बहुप्रतीक्षित ग्वालियर आगरा एक्सप्रेसवे के कार्य को गति देने के निर्देश भी दिए गए हैं। मुरैना से नागपुर तक प्रस्तावित मध्य भारत विकास पथ एक्सप्रेसवे को ग्वालियर चंबल के प्रमुख शहरों से जोड़ने पर भी सैद्धांतिक सहमति बनी है। अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने आज भोपाल में आयोजित मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के दो दिवसीय युवा विधायक सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित किया। विधानसभा अध्यक्ष ने राष्ट्रकुल संसदीय संघ भारत क्षेत्र जोन 6 के अंतर्गत आयोजित इस समागम में युवा विधायकों का आह्वान किया कि वह विकसित भारत @2047 की परिकल्पना को साकार करने के लिए देश के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से कार्य करें। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि मध्य प्रदेश में LPG, पेट्रोल, डीजल और CNG का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और इनकी सतत आपूर्ति जारी है। घरेलू एवं कमर्शियल गैस सिलेंडरों के वितरण में किसी भी प्रकार का अवरोध नहीं है और उपभोक्ताओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए सभी बॉटलिंग प्लांट्स अतिरिक्त समय तक कार्य कर रहे हैं। इसके साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत प्रदेश में LPG की कालाबाजारी रोकने के लिए सघन अभियान चलाया जा रहा है। सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में नए सचिवों की नियुक्ति की। बिहार कैडर के 1992 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS अधिकारी चंचल कुमार को सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के मौजूदा सचिव संजय जाजू को पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया गया है। भुवनेश कुमार को पर्यटन सचिव और श्रीवत्स कृष्णा को अल्पसंख्यक मामलों का सचिव नियुक्त किया गया है। रोहित कंसल को ग्रामीण विकास विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। भारतीय रेलवे द्वारा कल 1 अप्रैल से रिजर्वेशन और टिकट कैंसिलेशन के नियमों को और अधिक सख्त किया जा रहा है। नए नियमों के मुताबिक अब ट्रेन के निर्धारित समय से 8 घंटे के भीतर टिकट रद्द कराने पर यात्रियों को कोई रिफंड नहीं मिलेगा। इससे पहले यह समय सीमा 4 घंटे निर्धारित थी। इसके अलावा ट्रेन छूटने से 8 से 24 घंटे पहले टिकट कैंसिल कराने पर केवल 50% राशि ही वापस मिलेगी। प्रदेश में मौसम ने करवट ली है। मौसम विभाग के अनुसार साइक्लोनिक सर्कुलेशन के सक्रिय होने के कारण आगामी 3 अप्रैल तक प्रदेश भर में ऐसे ही हालात बने रह सकते हैं। विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए ग्वालियर, चंबल और बुंदेलखंड संभाग सहित प्रदेश के 16 जिलों में गरज चमक के साथ तेज हवाओं और हल्की वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। इन क्षेत्रों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चलने की संभावना जताई गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। IPL क्रिकेट 2026 के चौथे मुकाबले में आज मुलानपुर में पंजाब किंग्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। बैतूल कलेक्टर ने आज आयोजित जनसुनवाई में कई प्रकरणों में संबंधित अधिकारियों से चर्चा कर मौके पर ही निराकरण कराया। अनूपपुर जिले में घरेलू रसोई गैस के अवैध व्यवसायिक उपयोग की रोकथाम हेतु राजस्व एवं खाद्य विभाग की संयुक्त टीम द्वारा विभिन्न होटल एवं मिष्ठान भंडारों का औचक निरीक्षण किया गया। खंडवा जिले में जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत जल संचयन विषय पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।